श्री ऑनरेबल सैयद जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम जी फ्रॉम लोकसभा, बैठकर बोल सकते हैं जफर साहब।
थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम श्योर दैट यू विल नॉट कंसीडर दिस एज माय मेडन स्पीच बिकॉज़ आई एम अ न्यूकमर एंड यू हैव प्रॉमिस्ड दैट ऑल द न्यूकमर्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑफ सब्जेक्ट ऑफ देयर चूजिंग एट अ लेटर स्टेज।
काइंडली बैठकर बोले, माइक से सुविधा होगी, आवाज आएगी प्लीज।
सर आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, the honorable home minister, the honorable party president for having given me the opportunity to be here in front of all of you and to speak on this subject. Sir, this year budget presentation was the most difficult budget, purely because we have seen, everybody has spoken about it, that we had corona, we had lockdown, and then there was no revenue streams, completely shut revenue streams, and then we had huge expenditure to take care of the needy and those who needed support from the government, and government had to spend because this is a sensible and responsible government, they had to deliver it. So sir, sabse difficult budget jo hai is baar Nirmala Sitharaman ji, probably if I say that this was the worst time to present a budget in the entire free India, probably I would be right, because she had lot of problem to tackle and yet she has presented, yet she had committed that she will deliver us budget of the century. She has not only delivered her promises, but she has exceeded her promises as well. Sir, let me remind you that people have spoken about the growth number, the people have spoken about the IMF report, people have spoken about the contraction of the economy. We have all spoken. Of course, this is, personally I feel this is the things of the past, because now economy is back in order, everything is looking very, very positive, and this year budget presentation is primarily is a blueprint for the growth, for the future growth, and something which we all aspire to see, this kind of a budget. And today we have been able to have this budget purely because of the farsightedness of the honorable prime minister as well as the honorable finance minister. Sir, this budget I personally feel is a budget for the entire nation, for everyone, and more particularly the areas which have been neglected by the previous government, particularly I'm talking about the East. So poor Uday is very, very demonstrated in this budget as well, because Nirmala Sitharaman ji has considered a lot of opportunities being created for the eastern part of the country, which has been neglected in the past. Sir, I would like to start with some of the honorable members like Kapil Sibal ji had raised with few issues, sir. Particularly, he has mentioned about the Atmanirbhar of minorities, Atmanirbhar of farmers, Atmanirbhar of SCST, Atmanirbhar of MSME. I'm sure that I can give enough data about all the other things, but my colleagues have spoken about it. But coming from the minority community, I would like to remind the Honorable Kapil Sibal ji that when you say Atmanirbharta or Atmanirbhar, did you really make the minority community Atmanirbhar or deeply dependent and made them a struggle? Because if you say that I'm making this kind of allegation, then I will request you to see the Sachar Committee report, because it's a reflection for what you have done and how you have mistreated the community. And today, there is a government who believes in a good governance model and something which is visible, because this government has believed in taking care of every citizen of this country, not because of any particular religion. There is no preference. It is fairness, because the good governance model suggests fairness and effectiveness. And if you really want to analyze what is the good governance model, we have been fair. This government has been fair. We didn't see the name. We didn't see the name of the beneficiary. We didn't see what caste, creed, and community they belong. It is the citizen which needs support from the government, and the 450 schemes which has been, welfare scheme which has been launched under the honorable prime minister, which has effectively gone to every citizen of the country which needed those kind of schemes. And I must tell you that DBT was used to make it effective. 822 lakh crore was transferred in last 5 years, sir, through DBT, which is 60% of the welfare scheme which has been delivered to the needy and to our citizen. And this is something which is huge compared to any other country and any other standard. Sir, also, the Honorable Kapil Sibal ji observed one very important thing. He said industrial investment growth. He gave numbers in percentage, 5 years of UPA-1, 5 years UPA-2, and 5 years of NDA-1, very conveniently. He's a lawyer, I understand. Very conveniently, he forgot that he didn't mention at inception, what was the industrial investment growth rate, and at the end when they left the government, what was the investment growth? Sir, I want to tell everyone, and you must know, because I will tell you the story, because I used to be a banker. There are certain stories we must know, and this August horse must know, because it is something which was completely misleading. When we left the government in 2004, it was not, industrial investment growth was not in double digit. It was in upper double digit. And when they left the government, it was 1.6%. When they give the average, they do not. What does that mean? That jab hamari sarkar us waqt 2000 chode to hum change the, economy changi thi. Aur jab unhone choda to ICU mein economy thi. Isliye policy paralysis ke bare mein suna hai. Ye abhi koi baat kar raha tha. कि इकॉनमी इज इन बैड शेप. मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 2013 के बाद, जब आपको FCNRB बॉन्ड करना पड़ा, बिकॉज इकॉनमी वॉज इन बैड शेप, दिस इज करेंसी वॉज इन बैड शेप, इट वॉज अ फ्री फॉल फॉर द करेंसी एंड वी हैड टू डू इट. एंड टूडे जस्ट सी द नंबर्स, वेदर इट इज the foreign currency reserve, it is double. What you had, 296 billion, today we have around 600 billion. For the first time we have a positive current account for the first in 16 years. What we have, very very important number. If you see the FDI for 10 years, you could attract only $250 billion, and in only 7 years we are already in $500 billion. That suggests that the economic policy of our government. You talk about credit growth. Mr. Sibal spoke about credit growth. He spoke about the percentage terms in export, percentage terms in import. Sir, import kam hua to achha hi hua. Import kam hua, uski wajah hai ki humne aatmanirbhar desh ko banaya, isliye import kam hua. Sir, percentage achha hai, aap usko theek se zara muayana kijiye, achha lagega agar aap usko theek se desh ke hit mein bolne ka mauka milega aapko. Agar percentage growth ka aap baat kare, export pe jo thoda kam hua, marginally kam hua, sir, zyada nahi kam hua, marginally. Uski wajah bhi hai, jaisa hamare Sudhanshu ji ne kaha ki उस वक्त जो है ग्लोबल इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो हिंदुस्तान इज नॉट वर्किंग इन आइसोलेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, इज इंटीग्रेटेड इकोनॉमी. तो वहाँ जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होना ही था सर, इसलिए. और जब ग्लोबल ट्रेड में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ भी एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ना था, और साथ साथ चाइना और अमेरिका की जब लड़ाई चल रही थी ग्लोबल ट्रेड में, सबको मालूम है उस वक्त पूरी दुनिया का इम्पैक्ट हुआ था, तो यहाँ भी इम्पैक्ट हुआ था. और जाहिर है थोड़ा मार्जिनल इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई है, जब हमने इंसेंटिव स्कीम दिया है जो 13 सेक्टर को, और सारे बहुत सारे अलग जो इनिशिएटिव लिए सरकार ने, पॉलिसी डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया है, उससे जो है सरकार इकोनॉमी में सिर्फ अच्छा नहीं होगा बल्कि जो एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ेगा. और हमने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए सर, जो बाहर कंपनियां जो अब तक सोच रही थी कि चाइना वन प्लस वन कहाँ रखूँ, वो इंडिया में आ रहे हैं सर, इसलिए कि हमारा टैक्स रेट हमने कम कर दिया है. हमने जो है ऐसे इंसेंटिव स्कीम किया है ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बन जाए, और जो बाहर की दुनिया की कंपनी निवेश करे वो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रहे, यहाँ से निवेश करे, इसलिए कि चीप लेबर है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका पूरा भरपूर फायदा वो ले. और इसमें इस तरह से डिसीजन जो है उनके अच्छे आ रहे हैं सर. उन लोगों ने कहा था सर कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है. मैं उनसे बताना चाहता हूँ सर कि 2008 से 2012 के बीच में अगर आप बैंक के बैलेंस शीट को एनालाइज कीजिए सर, तो उस वक्त आपकी बैंक की बैलेंस शीट 1947 से 2008 तक सिर्फ 18 लाख करोड़ थी. उसके बाद 2008 से 2012 के बीच में वो हो गई 54 लाख करोड़, मतलब 3 times. उससे क्या समझ में आता है सर कि आपकी कंपनी इस हालत में नहीं थी जो आप लोन जिसने फ्री से बांट रहे. आपका सब लोगों ने जिसने भी देखा होगा सर कि अभी जो कौन बढ़ेगा करोड़पति, उस वक्त चलता था सर फोन ऑफ फ्रेंड से जो इकोनॉमी बर्बाद हो गई, देश आज भी जूझ रहा है उस फोन ऑफ फ्रेंड से. NPA की जो प्रॉब्लम है आज, जो निर्मला जी को वो असेट बैड बैंक नहीं बोलते सर उसको, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी बनाई है और असेट मैनेजमेंट कंपनी इसलिए बनानी पड़ी कि उस वक्त के पाप आज धुल रहे हैं सर. मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों सर, इस सदन को बताना चाहता हूँ कि क्या किया था उस वक्त. उस वक्त जो है इतनी जो कंपनियां हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ इस ऑपोजिशन को कि अगर मुझे गलत साबित करे, इसलिए कि उस वक्त की कंपनियों को आप जाके देखिए जिसको लोन दिया गया था सर, किस बेसिस पे दिया गया था. देर इज अ क्रेडिट इवेल्युएशन प्रोसेस, देर इज अ मेथड टू मैडनेस सर, वेयर यू एक्चुअली व्हेन यू लैंड देर इज सम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो. और वो सबसे बड़ा प्रोसेस जो होता है सर, व्हेन यू इवेल्युएट ए क्रेडिट यू डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज एट अ डिस्काउंटिंग रेट जिस पर लेन कर रहे हैं, उसके बाद अगर एबिटा अगर पॉजिटिव आता है मतलब उस कंपनी में जान है, आगे उस कंपनी करे। सर आपको बताना चाहता हूं उस कंपनी में जान नहीं थी सर, एबिटा नेगेटिव कंपनी को धड़ाधड़ लोन दिया गया, धड़ाधड़, इसलिए कि फोनो फ्रेंड था सर, इसलिए धड़ाधड़ लोन दिया गया और उसकी वजह से आज बैंकों की ये हालत है कि बैंक जो है वो पैसा माफ़ी नहीं कर पे ही नहीं कर सकते थे, इसलिए कि उसके पास वो क्षमता ही नहीं थी पे करने के लिए सर। और अगर मुझे लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो सर देर इज़ अ रिपोर्ट नॉट पब्लिश बाई एनी इंडियन इंस्टीट्यूशन, नॉट पब्लिश बाई एनी माई कंपनी, बट इट इज़ पब्लिश बाई ए फॉरन बैंक विच इज़ कॉल्ड क्रेडिट स्विस, डेट कर्स इज अ रिपोर्ट विच आई थिंक एवरीबडी शुड रीड एंड यू मस्ट नो वॉट एग्जैक्टली हैज बीन डन ड्यूरिंग दैट फोर इयर्स।
प्लीज कंक्लूड नाउ
सर। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट की कल जो है वित्त मंत्री जो है बात कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट की, सर उन्होंने और भी देखना चाहिए था फिस्कल डेफिसिट के बारे में। हमारे बाकी वक्तव्य ने बताया कि कैसे ट्रांसपेरेंसी हमने उसमें लाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर फिस्कल डेफिसिट अगर ग्लोबली देखेंगे तो हम फिर भी बहुत अच्छी हालत में, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने जो ऐसे चीज़ जो बिलो द लाइन आइटम था उसको हमने सीधे फिस्कल डेफिसिट में दिखा दिया इस बार, जबकि हिस्टोरिकली अगर देखिए तो वो बराबर छुपाते रहते चाहे अलग अलग कॉर्पोरेट में डाल के, लेकिन फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखाते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर एक मिनट और लूंगा सर, मेरा पहली बार बोलने का मौका मिला, थोड़ा समय दे दीजिए सर। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सर अगर आप फिस्कल डेफिसिट ग्लोबली देखिए अब के पीरियड का और फिस्कल डेफिसिट जब उनके समय में था तो 5.4 एवरेज फिस्कल डेफिसिट रहा जब उनकी सरकार थी सर, और हमारा 3.67 था। इस बार पहली बार हमने किया, बिकॉज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन फिस्कल डेफिसिट बढ़ा बट